From the conference center.
Metzidike Temple Square is 180th other Varsik Mahasammelan hai, jiske bhashan karta girja ghar ke maha adhikariyon aur mahapad adhikariyon mein se chune gaye hain. Aur Drepa Utah ke family choir ke gayak mandali dwara is sabha ka sangeet pradan kiya jayega.
This broadcast is
Bonneville Distribution dwara is prasaran ko janta seva ke roop mein purti ki gayi hai. Bina likhit karyakram koi bhi punpadan abhilakhan ya anya istemal mana hai.
President Henry B. Eyring.
President Henry B. Eyring girja ghar ke pratham adhyakshta ke pehla salahkar is sabha ko sanchalan karenge. भाइयों और बहनों, अब अंतिम दिनों के संत का यीशु मसीह का गिरजाघर के 180th वार्षिक महासम्मेलन में इस शाम तुम्हारा स्वागत करते हैं. प्रधान थॉमस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन की नेतृत्व कर रहे हैं, ने मुझसे कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूं. हम उन सभी के स्वागत करते हैं जो उपस्थित हैं या दूरदर्शन रेडियो या इंटरनेट के माध्यम द्वारा भाग ले रहे हैं, और उनका कई लोगों को जो दुनिया के बिना भागों में स्थित केंद्रों में देख रहे हैं, जहां सम्मेलन सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा ले जाएगा. फैमिली क्वायर सीएनडी से और ड्रेपर यूटा के संयुक्त गायक मंडली द्वारा इस सभा का संगीत प्रदान किया जाएगा, जिसका निर्देशन ब्रदर थिमोथी वर्कमैन और लिंडा मागेड. इस सभा की शुरुआत गायक मंडली इस गाने द्वारा शुरू करेंगे, कमी चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड. एल्डर क्लाउडिया डी जेबेक, जो 70 के हैं, उन्हें उनके द्वारा प्रार्थना दी जाएगी.
Oh. Our dear Father in heaven.
Hamare Pita Parmeshwar.
हम
इतना आभारी है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस जनरल कॉन्फ्रेंस में और हम आभारी है प्रेसिडेंट थॉमस मोशन के लिए आपसे चाहते हैं कि आशीर्वाद दे उनके उनके पत्नी के हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेसिडेंट आयरिंग और प्रेसिडेंट उगडोफ के लिए और जो सब अपोसल्स है कि उनके साथ रहे और सभी मिशनरीज और मेंबर्स सदस्य के साथ रहे उन पर अपना आशीर्वाद उंधेले हम आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जो बलिदान उन्होंने दिया है और हम चाहते हैं कि आप उन पर अपना आशीष उंधेले जो बीमार है और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें शक्ति दे कि हम उनके पास जाए और उनको आपका सुसमाचार दे और हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और हम सभी के साथ जहाँ कहीं भी हम रहे कि हम जाने कि हमें क्या बदलना चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि हम आपके आज्ञा का पालन कर सकें और हम पे आशीर्वाद दे कि हम बपतिस्मा का वादा नहीं भूले और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके पास वापस आकर रह सके यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन
the choir just sang.
Gaya kumandli, ne abhi gaya beautiful Zion built above. Pradhan Mansur ne kaha ki main Girjaghar ke maha adhikariyon, chetriyon 70 aur maha sahayak adhikariyon ko samarthan mat ke liye prastut karun. Jiske baad hum Elder Robert D. Hales aur Quinton Hale Cook, jo Bara ke prashad purohit hai, se sunenge. Uske Boston ke baad Bishop Richard C. Edgley, Bishop Ricky Adyaksta, hame sambodhit karenge. Yeh prastavit kiya gaya hai ki hum Thomas Spencer Monson ko antim dino ke santo ka Yeshu Masih ke girjaghar ke bhavishvakta, peygamber aur devdut aur pradhan ke roop mein samat kare. Henry Benyon Iring ko pratham adyaksta ke pratham salahkar aur Rita Frederick Usgov ko pratham adyaksta ke dusre salahkar ke roop mein jo sahmat hai wo prakat kare, jo hasahmat hai agar koi hai wo prakat kare. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम बोएट केनेथ पैकर, जो 12 देवतों की परिषद है, के प्रधान के रूप में सहमत करें और इन्हें परिषद के सदस्यों के रूप में बोएट के पैकर, एल टॉम पेरी, रसल एम नेल्सन, डेलन एच ओक्स, एम रसल बैलर्ड, रिचर्ड जी स्कॉट, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलन, डेविड ए बेडनर, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, or Neil Anderson, jo sahmat hai kripya prakat kare, jo asahmat hai usi tarah batlaye. Yeh prastavit kiya gaya hai ki hum pratham adhyaksta ke salahkaron aur 12 devuton ko bhavishvaktaon, paigambaron aur devadooton ke roop mein sahmat kare, jo sabhi sahmat hai kripya prakat kare. जो असहमत है अगर कोई है उसी साइन से प्रकट करें. यह प्रस्तुत किया गया है कि हम एल्डर स्पेंसर जे कांडी, ब्रूस सी हेफन, केनेट जॉनसन, ग्लेन एल पेस और लेंस बी विकम 17 के पहले कोरम के सदस्य से मुक्त करने और उन्हें सामान्य महाअधिकारियों नियुक्त करें. यह भी प्रस्तावित किया गया है कि हम एल्डर स्पेंसर वी जोन्स और उल्फगैंग एच पॉल को 17 के दूसरे कोरम के सदस्यता से मुक्त करें. इन 12 ब्रदरों की बड़ी सेवा के लिए, जो हमारे आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा रखते हैं, कृपया करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम फर्नांडो मलवेंडर और होजे एल टोरेस को क्षेत्र 70 के पैरों से मुक्त करें, जो इन बढ़िया सेवा के लिए हमारे साथ आभारी भवित्वक्त करने के लिए इच्छा करते हैं, कृपया करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम वेंसेस्लो हेच स्लबक को 1-4-70 में पुष्टि करें, जो हाँ करें प्रकट करें, कोई असहमत. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम अन्य महाअधिकारियों, क्षेत्रीय सत्रों और महासहायक अधीक्षकताओं को सहमत करें, जिसे वर्तमान समय वो नियुक्त है. जो सहमत है कृपया प्रकट करें, जो कोई असहमत प्रकट करें. प्रधान मंत्री, जहां तक मैंने देखा, सम्मेलन केंद्र में मतदान सर्वसम्मत रहा. धन्यवाद भाइयों और बहनों, तुम्हारे समर्थन मत, तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा और प्रार्थनाओं के लिए. हब हम एल्डर हेल से सुनने के लिए प्रसन्न रहेंगे.
हाल ही मैंने अपने एक 50 वर्ष पुराने दोस्त से एक पत्र प्राप्त किया, जो गिरजाघर का सदस्य नहीं है. मैंने उसे कुछ समाचार संबंधी पुस्तकें भेजा, जिसका उसने उत्तर दिया. शुरू में मेरे लिए कठिन था कुछ शब्दों को पढ़ना जो सिर्फ मार्मन संबंधी है, जैसे चुनने की शक्ति. शायद एक छोटा शब्द लाभदायक होगा. मुझे आश्चर्य हुआ कि वो चुनने की शक्ति शब्द का अर्थ नहीं जानता था. मैं एक ऑनलाइन शब्दकोश में गया. एजेंसी शब्द के 10 अर्थों और इस्तेमाल में से किसी में भी चुनाव करना कुछ करने के लिए नहीं बतलाता था। हम सिखलाते हैं कि चुनने की शक्ति वो क्षमता है और सौभाग्य है जो परमेश्वर हमें देता है अपने आप से चुनने और काम करने के लिए और दूसरे के लिए प्रभाव से काम ना करने के लिए। चुनने की शक्ति का मतलब है जिम्मेदारी से कार्य करना अपने कर्मों के लिए। हमारे चुनने की शक्ति उद्धार की योजना के लिए जरूरी है। इससे हम महान मध्यस्थ के द्वारा वो स्वतंत्रता और आनंद जीवन या शैतान की दासता और उसके बल के अनुसार दासता और मृत्यु चुनने में स्वतंत्र है। ये जानो कि हर आत्मा मुक्त है अपना जीवन चुनने और क्या वो बनेगा, क्योंकि ये आनंद सच्चा दी गई है कि परमेश्वर जबरदस्ती किसी को स्वर्ग नहीं भेजता। मेरे दोस्त और अन्य अच्छे पुरुष और महिलाओं सभी जगह पर है कि सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे आपके साथ और भी कुछ बातें दें चुनने की शक्ति के इस अर्थ के बारे में। हमारे इस धरती पर आने से पहले स्वर्ग पिता ने हमें अपना उद्धार का योजना पेश किया, एक योजना जिसके अनुसार धरती पर आकर और एक शरीर हासिल करना, अच्छे और बुरे के बीच में क्या करना है और फिर उसके पास वापस जाकर रहने के लिए। हमारे चुनने की शक्ति, हमारी क्षमता अपने लिए चुनने और कर्म करने की इस योजना का एक जरूरी भाग है। चुनने की शक्ति के बिना हम सही चुनाव कर और प्रगति करने के लायक नहीं होते। फिर भी चुनने की शक्ति के साथ हम गलत चुनाव भी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग के पिता के साथ रहने के मौके को खो सकते हैं। इस कारण एक उद्धारकर्ता दिया जाएगा हमारे पापों को झेलने के लिए और हमें मुक्त करने के लिए। अगर हम पश्चाताप करेंगे, उनके असीम प्रश्चित द्वारा उसने दया की योजना आयोजित की ताकि नए की मांग की पूर्ति हो और हमारे व्यक्तिगत पश्चाताप और आज्ञाकारिता पर आधारित हमें फिर परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए लाएगा। जब स्वर्ग के पिता ने अपनी योजना दी, लूसिफर ने परमेश्वर को बतलाया कि उसे भेजो क्योंकि वो सभी मानव जाति को मुक्ति देगा। इस योजना को ठुकराया गया। फिर यीशु मसीह स्वर्ग पिता का प्रिय और शुरुआत से चुनना हुआ। वो हमारा उद्धारकर्ता होगा, दुनिया का उद्धारकर्ता। लूसिफर के बगावत के कारण एक महान धार्मिक युद्ध हुआ। स्वर्ग के पिता के हर बच्चों को मौका दिया गया उस चुनने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो स्वर्ग पिता ने उन्हें दिया था। हमने उद्धारकर्ता यीशु मसीह में विश्वास करने की चुना, उनके पास आए, उनके पीछे हो ले और स्वर्ग के पिता ने हमारे अच्छाई के लिए जो योजना प्रस्तुत की को अपनाए। मगर हमारे स्वर्ग के पिता के एक तीसरी बच्चों में विश्वास नहीं था उद्धारकर्ता के पीछे हो लेने की और उन्होंने उसके बच्चे लूसिफर पीछे हो ले का चुनाव किया। परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि शैतान ने उसका विरोध किया है और मनुष्य के चुनने की शक्ति का नष्ट करने की कोशिश की है, शैतान को अस्वीकार किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी चुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना चुनने की शक्ति को खो दिया। आज शैतान और उसके चेलों के पास सिर्फ एक ही शक्ति है, हमें बहकाने और आजमाने का। उनकी एकमात्र खुशी है हमें अपनी तरह असहीन बनाने की। उनको एकमात्र खुशी मिलती है जब हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। मगर इस पर विचार करें, हमारे मरणशील जीवन से पहले हमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पीछे हो लेने को चुना और क्योंकि हमने ऐसा किया, हमें धरती पर आने दिया गया। मैं गवाही देता हूं कि उद्धारकर्ता का चुनने से आज अभी इस धरती पर हम और बढ़िया आशीर्वाद पाएंगे आनंद में। मगर ये जान लिया जाए हमें हमेशा उद्धारकर्ता के पीछे चलना चुना होगा अनंत दाव पर, और हमारे चुनने की शक्ति जरूरी है उसके जीवन भर। उद्धारकर्ता ने हमें दिखाया कैसे चुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। जरूसलम में एक लड़के के रूप में उसने खुद चुना, वो अपने पिता के भवन में होगा। उसके समय में उसने आज्ञाकारी ढंग से चुना अपने पिता की इच्छा पूरी करना। गस्तमनी में अपने सभी कुछ तड़पने की चुनी, कहते हुए मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होगी। तब स्वर्ग से एक दो दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य दिया। क्रूस पर उसने अपने दुश्मनों को प्यार करना चुना, प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर ताकि वो अब दिखा सकते हैं कि वो खुद के लिए चुना कर रहा है। उसे अकेला छोड़ दिया गया। पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने पूछा। अंत में उसने कार्य करना चुना, अपनी चुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया अंत तक झेलने के लिए जब तक वो खेसका पूरा हुआ। भले ही वो हमारे ही तरह परखा गया, हर चुनाव और हर कार्य के साथ उसने चुने की शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि वो उद्धारकर्ता बने, हमारे पाप और मृत्यु के बंधन को तोड़ सके। और उसके संपूर्ण जीवन द्वारा उसने सिखलाया कि जब हम अपने स्वर्ग के पिता की इच्छा करने की सोचेंगे, हमारी चुनने की शक्ति सुरक्षित है, हमारे मौके बढ़ते हैं और हम प्रगति पाते हैं। इस सच्चाई का शक्ति धर्मशास्त्रों में पाया जाता है। जब ने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी वो विश्वास रहा, और उसने परमेश्वर के अंत आशीर्वाद में मेरी और जोसेफ ने एक फरिश्ते के चेतावनी को चुनने के सोचा इजिप्ट भागने के लिए। उद्धारकर्ता का जवान सुरक्षा रहा। जोसेफ स्मिथ ने मुरनाय के निर्देश को चुना और पुनस्थापना आरंभ हुआ। जब भी हम मसीह के पास जाने को चुनते हैं, उनका नाम अपने ऊपर लें और उनके सेवकों के पीछे हो लें। हमारे मरणशील जीवन की यात्रा में ये याद रखना जरूरी है कि उसका विपरीत सच्चा है। जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते और पवित्र आत्मा का परिणाम को नहीं सुनते, हमारे मौके कम हो जाते हैं। अपने युवा अवस्था में मैंने एक बहुमूल्य लेख सीखा कि कैसे हमारे कर्म हमारे स्वतंत्रता को रोक सकते हैं। एक दिन मेरे पिता ने मुझे एक लड़की के फर्श को चमकने को कहा। मैंने चुना कि मैं दरवाजे से शुरुआत करते और कमरे के अंदर तक जाऊंगा। जब मैं समाप्त की ही करने वाला था, मैंने देखा कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा, दूसरी और कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। मैंने अपने आप को एक कोने में फंसा लिया था। मैं कोई और जगह नहीं जा सकता था, अब निकल नहीं पा रहा था। जब भी हम आज्ञा का पालन नहीं करते, हम अपने आप को आत्मिक रूप से एक कोने में फंसा लेते हैं और अपने चुनाव के बंदी हो जाते हैं। जबकि हम एक कोने में आत्मिक रूप से के पाए जाते हैं। प्रभु के पास लौटना आसान नहीं है, मगर वो लौटने लायक है। जब हम पश्चाताप करने के चुनौती को समझते हैं, हम पवित्र आत्मा के आशीर्वाद से प्रसन्न होते हैं, हमारे चुनने की शक्ति को राह दिखलाने के लिए, और स्वर्ग के पिता जो हमें आज्ञा देता है और हमें मजबूत करते हैं और समर्थन देते हैं। उद्धारकर्ता के रूप में जब बुद्धिमानी के शब्द को सुनते हैं, हम खराब स्वस्थ और पदार्थों के लत से निकलते हैं जो हमारे खुद कर्म करने की क्षमता को चीन लाती है। जब हम कर्ज में से निकलने की सलाह का पालन करते हैं, अभी हम अपना चुनने की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। जब हम भविष्यवक्ता की सलाह को अपनाते हैं, पारिवारिक फैमिली होम इवनिंग करते हैं और परिवार धर्मशाला आदि करते हैं, वहाँ हम उन्हें सुसमाचार सिखाते हैं। दुनिया बहुत गलत बातें बतलाती है चुनने की शक्ति के बारे में, और बहुत से लोग भी होंगे जो कहेंगे खाओ पियो और आनंद से जियो, और अगर हम अपराधी ठहराएंगे तब परमेश्वर हमें थोड़ा सा दंड देगा और फिर हम परमेश्वर के राज्य में बच जाएंगे। अन्य लोग बिना धर्म के जीवन अपना लेते हैं और परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। वो अपने आप को मना लेते हैं विरोध नहीं कामों में, और इसलिए जो कुछ एक आदमी करता है अपराध नहीं होता। ये परमेश्वर की रचना का विवेक और उसके अनंत आदेशों पर भी आस्कारक नहीं होगा। दुनिया के शिक्षणों के विरुद्ध धर्मशास्त्र हमें सिखलाता है कि हमारे पास चुनने की शक्ति है, और हमारा चुनने की शक्ति का सच्चा प्रयोग हमेशा फर्क लाते हैं उन मौकों पर जो हमें मिलती है, और हमारी क्षमता उन पर अनमोल करने और आनंद तक प्रगति करने की। उद्धारकर्ता ने के तौर पर भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा प्रभु ने राज सौल को एक साफ आज्ञा दी, इसलिए अब तू जाकर अमलोक को मार और जो कुछ उसका है उसका चल। मगर सौल ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, उसने वो किया जिससे मैं कुछ हद तक आज्ञाकारी होना अपने ही बुद्धि पर निर्भर होकर। उसने राजा आगा के जान को बख्श दिया और उसके बदले में सबसे अच्छे बड़े बैल और अन्य जानवर लाए। प्रभु ने यह भविष्यवक्ता शमूएल को बताया और उसे भेजा सौल के पास, उसे राजा के पास पर से हटाने के लिए। जब भविष्यवक्ता वहां पहुंचा, सौल ने कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा पूरी की है। मगर भविष्यवक्ता और कुछ जानता था और कहा, फिर भेड़ भड़ियों का ये मामिया और आज्ञा भेलों का आवाज को सुनाई दे रहा था। भविष्यवक्ता ने जवाब दिया, क्या प्रभु जले हुए प्रस्ताव और बलिदानों से उत्तन प्रस्तन होता है, जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होती है। अंत में सौल ने गलती मानी ये कहते हुए, मैंने अपने पाप किया है, मैंने तो अपने प्रजा के लिए लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर प्रभु की आज्ञा और तेरी बातों को उल्लंघन किया है। क्योंकि सौल ने पूरी तरह नहीं सुना, क्योंकि उसने कुछ हद तक आज्ञाकारी होने को चुना, उसने चुनने की शक्ति मौका खो दिया राजा बनाने की। मेरे भाई और बहनों, क्या हम पूरी तरह से प्रभु और उनके भविष्यताओं के आवाज़ को सुन रहे हैं, या सोल की तरह क्या हम कुछ हद तक आज्ञाकारी होने को चुनते हैं और मनुष्य के फैसले से डरते हैं? मैं मानता हूं कि हम सब गलती करते हैं। धर्मशास्त्र हमें सिखलाता है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि जो अपने आप को पहले के गलत चुनाव में फंसे देखते हैं, चुनने की शक्ति को सभी आशीर्वादों से वंचित जो उपस्थित है, अगर हम अपने चुनने की शक्ति को सच्चाई से पूरा रहेंगे। वापस आओ, जिन बुरे परिस्थितियों में तुम फंसे हो से बाहर निकलो और रोशनी में आओ। मसीह के प्रस्थित द्वारा सभी मानव जाति, तुम्हें और मुझे लेकर को मुक्ति मिलेगा सुसमाचार के कानून और सिद्धांतों का पालन करने से। प्रस्थित करने से थोड़े पहले उद्धारकर्ता ने महान महस्तत प्रार्थना बोला और हम सबसे के बारे में कहा, पिता, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं ही वहां हूं वो भी मेरे साथ है, कि वो मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। और आनंद जीवन ये है कि वो तुझ एक ही सच्चे परमेश्वर को और मैं और यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है जाने। मैं अपनी खास गवाही देता हूँ कि वो जीवित है। जब हम अपना चुनने की शक्ति को आजमाते हैं, हम उन्हें जान पाते हैं, उनके जैसा बन सकते हैं और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। हर एक घटना झुकेगा और सभी स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हम इसके उसके पीछे हो ले और अपने आनंद पिता के भी, जैसे हमने शुरुआत में किया था, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैंने पिछले अपने साल अपने मेरे पत्नी मेरी ने मुझे एक सीडी दिया उपहार के रूप में, जिसमें आशा विश्वास के गीत थे, जो वीरा लिन नामक एक मशहूर ब्रिटिश गायक थी, लिन जिन्होंने वालों प्रेरित किया था दूसरे युद्ध के समय। एक छोटा सा वजह है कि क्यों मेरी पत्नी ने मुझे ये उपहार दिया है। लंदन में बमबारी सितंबर 1940 में शुरू हुई थी मेरे पैदा से एक दिन पहले। मेरे माँ ने जब लंदन में रेडियो सुन रही थी, ये सोचा कि रेडियो अनाउंसर के नाम से पूरा, जिसका नाम क्विंटन था, वो गायक वेरलिन अब 93 वर्ष की हो गई है। पिछले वर्ष उसके कुछ यूथ के सामने के गीत फिर प्रस्तुत किए गए और तुरंत ब्रिटेन के संगीत चार उपहार गाया। एक गीत जिसका शीर्षक था When the Lights Go On Again All Over the World, मुझे भा गया। वो गीत ने मेरे मन में जो विचार लगाए, पहले एक ब्रिटिश राजनीति का भौषिकता के शब्द, यूरोप भर में बाटियां भोज रही है हम अपने समय में उस पे उजल, और दूसरा बमबारी पर दवा बोलने जो लंदन जैसे ब्रिटिश शहरों पर होता था, आक्रमण करने वालों के निशमस लगना कठिन था। ये गीत जाहिर करता है कि आशीर्वाद उम्मीद के आजादी और उजियाला भी स्थापित होगा। हमने भी जो उद्धारकर्ता का कार्य समझते हैं और मसीह को उजियाला को अच्छाई और बुराई के बीच के बेकरार जगत में जानते हैं, वो मसीह का उजियाला है जिससे जारिये मनुष्य अच्छाई और बुराई के गायन रखता है। अंतिम दिनों के संतों नैतिक सिंतियों और धार्मिक आजादी पर आक्रमण कभी इतना ताकतवर नहीं रहा है। अंतिम दिनों के संतों के रूप में अपने पूरी कोशिश करनी है उन जियाला को कायम रखें और परिवारों और समाज को नियुक्त रखें। एक हमेशा मौजूद खतरा परिवार के लिए है, जरूर हमारे बुराई की शक्ति से जो दिशा से है, जब हमारा मुख्य कोशिश होना चाहिए कि हम उजियाला और सच्चाई को ढूंढे। अश्लीलता खासकर अधिकांश नेक्त विनाश का एक औजार है, उसका प्रभाव सीधा नैतिक गुनाहों पर पड़ता है। कुछ टीवी कार्यक्रम और इंटरनेट स्थान बारंबार होते हैं, ऐसी बुरी शक्तियों उजियाला और आशा को दुनिया से निकाल देते हैं। अगर हम बुराई को अपने घरों को जीवन से नहीं निकालते, तब होना कि धमाके हमारे शांति में भी आ जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में रहें पर दुनिया के जैसे ना बने। साथ में हमें धार्मिकता घरों में बढ़ानी है। परिवार प्रार्थना और धर्मशास्त्र ध्यान सिद्धांत जरूरी है। हमें अपने घरों में प्रस्तुत करना है सुसमाचार माध्यम लगाया जाए, पवित्र, प्यारी और अच्छी है। अगर हम अपने घरों को पवित्र रखेंगे, बचाएंगे, हम बुराई से बच सकते हैं
जो धर्मशास्त्र बताए, अपने खुद ही परिवारों को सुरक्षित रखने के साथ हम अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए उजियाला कर सकते हैं। उद्धारकर्ता ने कहा, उसी प्रकार अपने उजियाला को ऐसे धरो कि ताकि दुनिया देखे और तुम्हें पहचाने ताकि और आशीर्वाद दे। हमारे समय को ये कहा गया है, बुनियादी विश्वास परमेश्वर की शक्ति और अधिकारी में पर सिर्फ है। कैसे इन परिस्थितियों में हम आदर्शों का प्रचार करेंगे, इस तरीके से आशीर्वाद मिलेगा। हिंसा और बुराई की तेजी के बांधने में कर्म है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्यता मोमन और उनके पैदा के बारे में सोचा जब उन्होंने कहा, तुमने उस यीशु को कैसे अस्वीकार किया जो तुम्हें अपने आप को पास बुलाया था। मुरनाए बच्चा था, लोगों को नाश होने के कहानी लिख दिया था। मेरा व्यक्तिगत अनुभव दुनिया भर के लोगों के साथ जीने और बातचीत करने पर आशीर्वाद बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि उजियाला और सच्चाई को सुरक्षित हम रख सकते हैं। सभी देशों में कई लोग हैं जो परमेश्वर के पूजा करते हैं, उस पर जिम्मेदारी महसूस करते हैं। गिरजाघर नेता होने के नाते हम अन्य धर्म की नेताओं से मिल चुके हैं और पाया है सामान्य नेताओं सिद्धांत है कि समाज की चाह में। हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग अभी भी मूल्य नेताओं गुनाह का आदर करते हैं, मगर गलती मत करना। वहां लोग भी आए जो धर्म को नाश करना और समाज में और बर्बाद करना चाहते हैं। अश्लीलता और संपत्ति योग, मनुष्य का व्यापार, चोरी और व्यापार में ऐसा लोगों की शक्ति और प्रभाव बहुत बड़ा रहता है, वो बहुत कम हो संख्या में। हमेशा से एक जंग होती है रही है धार्मिक लोगों और उन लोगों के बीच जो धर्म और परमेश्वर के हैं। कई नेता जो लोगों को अपने दर्जे से प्रभावित करते हैं, आज दुनिया के नेताओं दृश्यालिक है। उनके अनुसार कोई कम संबोधित नेताओं नहीं है। वो मानते हैं कि नैतिक लक्षणों को चुनना नहीं देना है। उजियाला जो पवित्र आत्मा से अलग है उनके है। धर्मशास्त्र से जानते हैं कि मसीह का उजियाला वो आत्मा है जो उजियाला देता है। ये उजियाला पूरी दुनिया के लिए है। प्रधान बोइट के पेकर ने सिखलाया है कि ये प्रेरणा का एक स्रोत है जो हम मानव परिवार के आदर्श के साथ बढ़ते हैं। ये एक वजह है कई लोग नेते गुनाह को स्वीकार करते हैं जब वो धार्मिक सिद्धांतों पर करते हैं। जैसे हम मोमन धर्मशास्त्र के मोजाए के पुस्तक में पढ़ते हैं, ये सामने नहीं है कि उचित बातें कि विपरीत लोगों को मत हो, परंतु ये सामान्य है कि थोड़े लोगों की इच्छा अनुचित बात की हो। मोजाया फिर चेतावनी देती है, अगर ऐसा समय आता है जबकि लोगों दुर्चर का चुनाव करती है, तब वो समय होगा तब परमेश्वर की चेतावनी आएगी। हमारे इस बुरी दुनिया में विश्वास पर अधिक गुना है। नैतिक पर जो धार्मिक बुद्धि से उत्पन्न होता है भास नहीं होता है। कई देशों में के अनुसार ये धार्मिक बुद्धि को चुना नहीं जाएगा, मगर दोनों को ठुकराना नहीं चाहिए। धार्मिक विश्वास उजियाला ज्ञान और बुद्धि का शुरुआत है और समाज को एक प्रभावशाली तरीका से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दो धार्मिक सिद्धांत इस विषय को समझाते हैं। हम विश्वास करते हैं सच्चे होने पर। सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ में बताता है, कई वर्ष पहले जब हम कैलिफोर्निया में वकील था, एक दोस्त आया और वो मुझको मिलने आया और मुझसे मिलने आया और जो एलडीएस बिशप से प्राप्त किया था। वह बिशप ने लिखा कि उसके भक्ति से सदस्य की ये व्यक्ति जो मेरे हरक का एक پرانا کرمچاری تھا ایک میرے, مگر ایک وچن بند انتیم دنوں کے بننے کے بعد اور یسوع مسیح کے ساتھ چلنے پر لینے جانے پر اس کرمچاری نے منع کی جو اس نے کیا تھا وہ بے ایمانی تھا. میرے گراہک پرشن تھا کہ گرجا گھر اپنے سامانیہ نیتاؤں کی مدد سے اس ویکتی کا پرمیشور کے ساتھ میل کرا کر ان کی کوشش کی انوسار ان جیلا اور سچائی سے بارے میں جو ملتا ہے سماج پر اس کا اثر کے بارے میں سوچائے اگر یوا پاٹھشالا میں آتی ہے. ہمارے لیے سامنے سچائی ادھارکرتا کے لیے کئی ان دھرموں پہ سچائی ایک بھومل لکشن اور اتہاس کے بھی. وہ شاعر روبرٹ بینس نے کہا ایک سچا ویکتی پرمیشور کا سب سے اتم پریشرم ہے. یہی وجہ تھی کیلیفورنیا کا وہ ویکتی پرشتاپ کر رہا تھا اپنے پرانے بےمانی کے کاریہ کے لیے. ایک شروعات بھاشن میں پہلے سال کلیٹن کرسٹن ایک ہارورڈ سے پروفیسر نے گرجا گھر کے نیتا سے یہ کہا یہ دوست آشچرچکت ہوا تھا جان کر کہ دھرم پرچارتر کے لیے کتنا ضروری ہے. اس نے بتایا کہ ان سمجھاؤں میں جہاں ناگریوں کو چھوٹے عمر سے پرمیشور کی پرگتی ہوتی تھی ان سماجوں میں جہاں یہ سچ نہیں ہے وہاں پراپت پولیس والے نہیں ہو سکتے سچائی قاعدے کو لیے. سپشٹ روپ سے نیکتی گن سچائی کے حاشیب سے ایک وشک بھومکا نبھا سکتے ہیں کے لیے اور وہ لوگ ہیں دیگے پاس یسوع مسیح میں وشواس نہیں ہے. ایک دوسرا ادھارن کیسے دھارمک وشواس سماج کے لابھ پہنچاتا ہے. پچھلے دو سینچریز میں کئی دھرم پر آدھارت سانسد آئے رہے ہیں انتی کے لیے جو کتھرو پرس میں پھنسے اور کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ سبھی منش پرمیشور کی پراپت اور سمانتے میں رچے ہیں. اس کوشش کے ساتھ اس نے اپنے نیتاؤں کے ساتھ مل کر سروجنک نیتک کو سدھارنے نکلے. وہ وشواس کرتے تھے کہ پڑتائی اور شاسن کے نیتاؤں کے انوسار چلنا چاہیے. نیتک اور دھارمک بتاؤ کے دھارشک تھی وہ جس کے لیے وہ جیتے تھے چاہا وواہ کو بچانا غلاموں کے وپار کے کاریہ پر حملہ کرنا سمبند دن پر بحث کرنا. بہت شکتی کے ساتھ اس نے دیش کی نیتک اور ملنسار نیتاؤں کی شکت کیا. اس نے آدھرم کی وورود جھگڑا کی دوران ہمارے گرجا گھر کی شروعات کے اتہاس میں ہمارے کئی سدسیہ غلامی کی ورودھ تھے. یہ ایک خاص وجہ تھی ہمارے انیک دھارمک وشواس کو سچت کرنے کے لیے اچت جب ہی انہوں نے ورودھ اور گھروں کے لیے ہنسا انبھو کیا مشنری میں گمنا باکس کے دوارا. 1833 میں جوسف اسمتھ نے ایک بھرک وران پراپت کیا جس میں کہا گیا کہ وہ اچھا نہیں کہ کوئی ویکتی کسی کے نیچے غلامی کرے. یہ صرف دو ادھارن ہیں کہ کیسے ہم وشواس آدھرت گن کے سدھارتوں کے نیو ہے اور بہت کے سماج کو آشیرواد دیتے. وہاں پر اور کئی ہیں ہمیں بھی بھاگ لینا چاہیے اور چرتر والے ایماندار لوگ کو سمانتر کرنے نیک گناہ کے. مجھے اسپشٹ سے کہنا دیکھ سبھی وچار کو بحث میں سننے چاہیے نہ دھارمک کے, مگر یہ بھی اسپشٹ ہے کہ ایسا وچار اور گناہوں کو اپنے قابلیت انوسار تلنا کرے. ہمارے سدھارتوں کا نیتک نیو اچھا ادھارن کو سکتا ہے دنیا کے لیے اور سنگیت کرنے کے سنگیت ہو سکتی اور دنوں نیکتوں اور یسوع مسیح میں وشواس کے لیے. ہمیں اپنے پریواروں کو بچانا ہے اور اچھے کمروں کے سب لوگوں کے ساتھ آگے رہنا ہے اور کرنے کے لیے جو ہم کو سکتے ہمارے سماجوں کے اجیالا آسا اور बेकरार रखे। अगर हम सिद्धार्थों के जिएंगे और प्रचार करेंगे, हमें यीशु मसीह के साथ चलेंगे जो इस दुनिया का सच्चा उजियाला है। हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह एक दूसरे आगमन की तैयारी करेंगे। हम उस सुंदर दिन की इंतजार करेंगे जब आजाद दिल गाना गे, जब फिर बातेंगे जलाएंगे दुनिया भर में यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
हम एक सभी समय के से महान युग में जीते हैं। वो समय जब पहला भविष्यवक्ता इंतजार करते थे पहले से बता देते, और मैं विश्वास करता हूँ सद से यदि सारे स्वर्ग के आशीर्वादों के साथ जो हमें प्राप्त हुआ है, शैतान कभी इतना सच्चा हमेशा सक्रिय और विरोध संदेशों से हम सबके ऊपर बावछार करता है। देवदूत मोरोनाई नौजवान भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को आज्ञा किया कि तो वो अच्छाई और बुराई दोनों में जाना जाएगा दुनिया भर में, और उसका आगमन की पूर्ति कभी भी नहीं हुई। भविष्यवक्ता ने अपनी गवाही के लिए अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया, और आज भी गिरजाघर पर बावछार आ रही और उद्धारकर्ता पर भी। उद्धारकर्ता की सच्चाई, उसका संतुष्ट बलिदान और उसके सामान्य को अमल करना हम सब के लिए चुनौती है, और हमेशा ताल दिया जाता है कि कमजोर की इच्छा या बिन पढ़े लिखे की तरह। उस तरह की विरोध संदेशों से गड़बड़ी संदेशों और निराशावाद हो सकती जो हमारे हर एक मूल सच्चाई को वादा पहुंचती है जिसे हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास परमेश्वर में और हमारे आने वाला आशा में। ये हमारे जिंदगी की सच्चाई को सकती है, मगर हम फिर भी बिन चुन सकते हैं कि हम इस किस तरह प्रतिक्रिया करें। जब हमारे पवित्र सिद्धांतों और विश्वासों को चुनौती मिलती है, यही हमें समय मिलती है कि हम परमेश्वर के साथ परिचित हो सके, बिल्कुल अकेले और दोस्त की तरह। उन मुश्किलों और चुनौतियों की कारण जिनसे हम आज की दुनिया में सम्मुख होते हैं, मैं एक चुनाव देना चाहता हूँ, एक चुनाव जो शांति और बचाव का है, एक चुनाव जो सबके लिए आसान हो। उद्धारकर्ता ने कहा, मेरे पास आओ और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये सब करने वाले कार्य है, आओ मांगो, और ये सब चुनाव है। तो मैं कहता हूँ कि विश्वास को चुनिए, संदेह को बजाय विश्वास को चुनिए, डर के बजाय विश्वास को चुनिए, अनजान और अनदेखा के बजाय विश्वास को चुनिए, और विश्वास को चुनिए निराशावाद के बजाय। आलमा के विश्वास पर अच्छा वार्तालाप किया गया है जो 32nd आलमा की अध्ययन में लिखी हुई मॉर्मन धर्मशास्त्र में। कई चुनाव है विश्वास को बढ़ाने और रखने के लिए। आलमा ने हमें निर्देश दिया चुनने के लिए। उसके शब्द थे, को शुरू करने वाले चुनने से। उसने इन शब्दों को इस्तेमाल किया, जागो, सावधान, जांच, कसरत, चाहना, काम और बोना। अगर वो सच्चा या अच्छा बीज है, और अगर तुमने अपने विश्वास के कारण उसे फेंक नहीं दिया जिससे कि तुम प्रभु की आत्मा का विरोध करो, तब वो तुम्हारी छाती के अंदर विकास करेगा। हाँ, विश्वास एक चुनाव है, और उसे चुना चाहिए और बढ़ाना। इस प्रकार हम अपनी विश्वास के लिए खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ कई चीज है जो हमें पता नहीं। मुझे संगताओं के बात के विषय में पता नहीं है, जो सुंदर दुनिया जिसमें हम रहते हैं। मुझे प्रायश्चित करने के पीछे के बारे में समझता नहीं हूँ। किस तरह उद्धारकर्ता की बलिदान सभी पश्चातापी मनुष्यों को साफ कर सकता है, या उद्धारकर्ता किस तरह सभी मनुष्यों की पीड़ा को झील सकता है। मुझे पता नहीं कि कहाँ पर है ज़राहेम्बा की शहर। मुझे पता नहीं कि क्यों कभी कभी मेरे विश्वास विज्ञान या ज्ञान के साथ लड़ने लगती है। मगर जब सब कुछ नहीं जानता, मैं महत्वपूर्ण जानता हूँ। मैं साधारण और सरल सुसमाचार के सच्चाई को जानता हूँ जो मुक्ति और अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। मैं जानता हूँ कि उद्धारकर्ता ने सभी मनुष्यों के लिए दर्द को सहा है और सभी पश्चाताप के लिए हुए मनुष्यों को पाप से क्षमा मिल सकती है। और जो मैं नहीं जानता, ये नहीं सही तरीके से समझता, अपने विश्वास के शक्ति भरे मदद के साथ मैं खाली स्थान को भरता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और फिर जैसे एल्मा ने पढ़ाया, हमारे विश्वास हमें सही ज्ञान देता है। आगे बढ़ते रहान अनजान रास्ते में सिर्फ उम्मीद और आशा के साथ हमारे विश्वास की सच्चाई और संपूर्ण प्रभु के लिए है। और फिर आल्मा के मर्यादा पर चलने से हमें चुनना चाहिए, हमें विश्वास को चुनना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में सवाल और विश्वास नहीं हो, चुनिए अपने अंतर शक्तियों को जागृत करके मेरी बातों पर अनुशब्धन करो। विनम्रता से प्रभु की बड़ो टूटे हृदय और शोकतकर आत्मा के साथ ही रास्ता है सच्चाई और प्रभु की रोशनी की और ज्ञान और शांति में। अगर तुम्हारा गवाही कमजोर, नया और सही नहीं है, चुनिए विश्वास के एक अंश भी कम में लाइए। चुनिए जब तक कि तुम उसकी बातों पर विश्वास न करने लगो। जब विचार मकसद या व्यक्तिगत रूप से गलतफहमी हो जाती है, पवित्र शिक्षा और सिद्धांत के साथ या गलतफहमी के संदेश हमारे विश्वास को स्थिर नहीं रख सकेगी। देवदूत पॉल ने बतलाया, चुनिए विश्वास का दिया अपने से दिल से मत निकाले। याद रखना, हमें गवाही नहीं मिल सकती जब तक विश्वास की परीक्षा नहीं मिल जाए। अगर तुम्हारा विश्वास साबित हुआ अटल है, चुनिए उस बात बहुत सुरक्षित रखने के लिए। जितना शक्तिशाली हमारा विश्वास होगा, सारे मिले हुए संदेशों के साथ हमें करेगी। वो टूट भी जा सकती है। उसे हर समय सुसमाचार को पढ़ना, प्रार्थना और उसके वचनों को अमल में लाने से भोजन मिल सकती है। जब चेलों ने यीशु से पूछा कि क्यों वे शैतान को बाहर निकालने में अफसल थे, जैसे कि उन्होंने उद्धारकर्ता को करते हुए देखा, यीशु ने जवाब दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरककर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा। मगर विश्वास के कारण मैंने संदेश के पहाड़ और निराशा को सरकते हुए और इच्छा और आशा में बदलते हुए, मेरे विश्वास के कारण मैंने व्यक्तिगत रूप से यह पाया है कि पाप को पहाड़ को पश्चाताप और माफ करने से बदला जा सकता है। और विश्वास के कारण मैंने व्यक्तिगत से यह पाया है कि पीड़ा की पहाड़ शांति, आशा और विचार भाव में बदल जाती है। हाँ, मैंने पहाड़ को सरकते हुए देखा। मेरे विश्वास के कारण से मैं कठिनाइयों और मुसीबतों को पार करता हूँ शांति और वादों से साथ अपनी जिंदगी में। मेरे विश्वास के कारण से मैंने अपने सवालों और संदेह के वादों और समाज की पूर्ति करता हूँ। मेरे विश्वास के कारण से मैं अनजानी, अनदेखी और पवित्र सवालों से वादन को आगे बढ़ता हूँ। और मेरे विश्वास के कारण से कठिनाइयों में मैं शांति और धन्यवाद को महसूस करता हूँ। सच्चाई में ये सब अच्छी समय है। और जब तुम विश्वास को चुनते हो और विश्वास करते हो कि उसकी आशा करते हो जो सत्य है प्रभु के चीजों में, फिर तुम इन शब्दों को इस्तेमाल करते हो, मैं गवाही देता हूँ या मैं जानता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने दिल में इस पावड़े को लगाया है और अपनी जिंदगी भर उसे सही ज्ञान से पोषण किया है। और मैं यह भी गवाही देता हूँ कि जोसेफ स्मिथ परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, और वही जीवित अवजार जो प्रभु ने इस्तेमाल किया था, वही पूरे और सच्चे सुसमाचार को जो यीशु मसीह का है धरती पर लाने के लिए। मैं यह गवाही देता हूँ कि प्रधान थॉमस एस मॉन्सन आज का प्रभु का भविष्यवक्ता है। इस तरह विश्वास का चुनाव तुम्हारा है। विश्वास को चुने यीशु मसीह के नाम से। आमेन।
choir and congregation will now join in singing.
Choir and congregation, the Lord, I will follow thee. At the conclusion of the singing, Ganan ke baad, Elders Kevin R. Duncan aur Garrett W. Gong, jo 70 ke hain, humse baatein karenge. Elder Gong ke bhashan ke baad, hum Elder Neil L. Anderson, jo 12 devaton ki parishad ke hain, unse sunenge.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The winter of 1848 was difficult.
1848 के सर्दी का मौसम कठिन था और चुनौतीपूर्ण था सोल्ट लेक वैली के आरंभिक निवासियों के लिए. 1842 के गर्मी के मौसम में ब्रिगम यंग ने संतों से घोषणा की कि वो अब अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं. यही वही जगह है, प्रधान यंग ने कहा, इस जिसे एक दृष्टि में दिखाया गया था. गिरजाघर के शुरुआत के सदस्यों ने घोर कठिनाई का सामना किया था. उन्हें अपने घरों से निकाला गया मगर अब अंत में वो सही जगह पर थे. और जबकि 1848 का सर्दी का मौसम इतना कठोर था, बर्फ इतना ठंडा था कि कुछ लोग के पैर बुरी तरह से गम हो गए थे. बेचैनी का माहौल छाने लगा था संतों पर। कुछ के जगह सदस्यों ने कहा कि वो अपना घर वैली में नहीं बनाएंगे, वो अपने वैगन में रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि गिरजाघर के नेता उन्हें अच्छे स्थान पर ले जाएगा। वो अपने साथ बीज और फल का पौधे लाए थे। जिम बेगर, जो उस समय के नामी खोजी था, ने बिगमरन को $1,000 देने का वादा किया अगर वो फैला भूषेल मकई उगा लेगा सोलेक सिटी में, क्योंकि उसके कहना था कि वो नहीं कर सकता। मामला को उजड़ने के लिए कैलिफोर्निया में उसी समय सोना पाया गया था। कुछ गिरजाघर सदस्य कल्पना कर रहे थे कि वे जीवन आसान और ज़्यादा फायदा होगा अगर वो कैलिफोर्निया चले जाए धन और अच्छे वस्त्रकरण के लिए। बचैनी के माहौल में ब्रिगम ने गिरजाघर सदस्यों से बातें की। उसने घोषणा की, ये वैली परमेश्वर द्वारा चुना गया स्थान है उनके लोगों के लिए, हमें यही रहना है। परमेश्वर ने मुझे ये जगह दिखलाई उनके लोगों को बसने के लिए, ये और यहीं पर वो सफल होंगे। वो हवाओं को शांत करेंगे अपने संतों की अच्छाई के लिए। वो बर्फीली हवाओं और अनुपजाऊ धरती को दातेंगे और जमीन उपजाऊ हो जाएगा। भाइयों, जाओ अभी और अपने बीच बोना शुरू कर दो। इन आशीर्वादों के आर्थिक प्रधान यंग ने घोषणा की कि सोल्ट लेक वैली अनेक देश के लिए आम रास्ता बन जाएगा। राजा और महाराजा धरती को देखने आएंगे जब से उत्तम प्रधान का एक मंदिर यहाँ निर्माण होगा। फिर भी इतिहास ने दिखलाया है कि हर एक भविष्यवक्ता को ब्रिजम यंग ने की थी वास्तव में हुआ। वैली हरा भरा हुआ और उपज भी लाया। संतों ने सफलता प्राप्त की। 1848 का सर्दी का मौसम एक बड़े वरदान का समय था जब प्रभु ने अपने लोगों को एक बहुमूल्य पद सिखलाया। उन्होंने सीखा, जैसे हम सब को सीखना है, कि जो एक सही और मजबूत रास्ता है सुरक्षा पाने का इस जीवन में, वो मिलता है परमेश्वर के विशेषताओं से सलाह पर भरोसा करने और उनके अनुसार करने से। वास्तव में इस गिरजाघर में सदस्य का सबसे उत्तम आशीर्वाद है कि हमें परमेश्वर के जीवित भविष्यवक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। प्रभु ने घोषणा की कि कभी भी एक ज्यादा व्यक्ति नहीं होता धरती पर जिस पर प्रवृत्ति की शक्ति और चाबियां दी जाती है। थॉमस एस मॉन्सर परमेश्वर के वाणी का हासिल करता है गिरजाघर के पूरी सदस्य और विश्व के लिए। साथ साथ हम प्रार्थना प्रथम अध्यक्षता के संक्रांतों और 12 देवतों के परिषद को भविष्यवक्ताओं देवतों और के रूप में स्वीकार करते हैं। बर्फ से जमे पैरों और एक बंजर जमीन के साथ वास्तव में संतों को विश्वास की जरूरत थी। तब भी प्रभु ने उनकी आज्ञाकारी को प्रमाणित किया और आशीर्वाद दिया और सफलता बनाया उन्हें, जो उनका महीना था। हम आसानी से उस फंदे में फंस सकते हैं कि हम मानव बहुल पर भरोसा करें सभी तरह के सलाह के लिए, बहुत बच्चे पालने से लेकर कैसे खुशी हासिल करते हैं, जबकि कुछ जानकारी का मोल है। गिरजाघर सदस्य होने के नाते हमें सच्चाई के संपूर्ण रोत का पहुंच है, जो है खुद परमेश्वर। हमारे लिए अच्छा होगा जब हम अपने मुसीबतों और सवालों के जवाब उन चीज़ों में से ढूंढे जो प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रकट किया है। आज उसी टेक्नोलॉजी से हमें भविष्यवक्ताओं की वाणी की पहुंच मिल सकती है किसी भी विषय पर। हमारे परमेश्वर ने हमें विवाह और परिवार के बारे में क्या सिखलाया है, और उन्होंने हमें शिक्षा और बुद्धिमानी से जीवन बताने पर क्या बतलाया है। जब भविष्यता हमें सिखलाते हैं और कुछ लोग को पुराना अलोकप्रिय या नामुमकिन भी लग सकते हैं, मगर परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है और उनसे उसने एक सिस्टम तैयार किया है जिससे हम उनकी इच्छा जान सकते हैं। इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना इस पूर्ण समय का भविष्यवक्ता से शुरुआत में प्रभु ने प्रस्तुत किया है और भविष्यवक्ताओं को बताता है जो हमें जानना है। फोर्टीन फंडामेंटल्स इन द प्रॉफिट सिद्धांत कहा, आज सुबह से के सभा में एल्डर क्लोडियो कोस्टा सस्ता राजस्थान में है, हमें इतनी अच्छी तरह बतलाया इन 14 फंडामेंटल के बारे में क्योंकि वो इतने ज़रूरी है। मैं इन्हें फिर दोहराना चाहता हूँ। द प्रॉफिट इज द ओनली मैन हु स्पीक्स फॉर द लॉर्ड इन एवरीथिंग। द लिविंग प्रॉफिट इज मोर वाइटल टू अस देन द स्टैंडर्ड वर्क्स।
Four, the prophet will never lead the church astray. Five, the prophet is not required to have any particular earthly training or credentials to speak on any subject or act on any matter at any time. Six, the prophet does not have to say, "Thus saith the Lord," to give us scripture. Seven, the prophet tells us what we need to know, not always what we want to know. Eight, the prophet is not limited by men's reasoning. 9. The prophet can receive revelation on any matter, temporal or spiritual. 10. The prophet may be involved in civic matters. 11. The two groups who have the greatest difficulty in following the prophet are the proud who are learned and the proud who are rich. 12. The prophet will not necessarily be popular with the world or the worldly. 13. The prophet and his counselors make up the first presidency, the highest quorum in the church. 14, follow the living prophet and the first presidency and be blessed. Reject them and suffer.
भाई और बहनों, 1848 के संतों की तरह हम भविष्यवक्ता का कहना मानने को चुन सकते हैं या हम मानव बहुपल पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे पास वो अकलमंदी है कि हम जीवित भविष्यवक्ता और देवत्व पर भरोसा करें और उनके सलाह माने। मैं उनके अच्छाई का गवाही हूँ और मैं बयान करता हूँ कि वो परमेश्वर का द्वारा है। मैं ये भी बयान देता हूँ कि सिवाय उनके द्वारा हमें शांति प्राप्त नहीं मिल सकती और उसी के द्वारा हम प्रभु के पास लौट सकते हैं। और ये मैं यीशु मसीह के नाम कहता हूँ, आमीन।
Dear brothers and sisters,
प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारा पुत्र प्रोवो मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर में था, बगन गोंग ने उसके पास ताज़ा बनाया हुआ ब्रेड को उसके भेजा और उसके प्रचारक साथियों के लिए ये उनके धन्यवाद पत्र है सिस्टर गोंग को मिला। बहन गोंग, वो ब्रेड उसी तरह के था जैसा मैं अपने घर पर खाता हूँ। बहन, ये खाया सकता हूँ। बहन गोंग, ब्रेड लाजवाब था। अगर तुम्हारा शादी शुदा जिंदगी सिमरन गोंग के साथ खत्म हो गया तो मुझे डेटिंग करना शुरू कर दो। हमने अपने प्रचारकों को प्यार करते हैं, हर एक बहन एल्डर बूढ़े लोग से भी। हम उसके खास प्रचारकों को आभारी है जिन्होंने पहली यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रसिद्ध। मैं खुशी से गवाही देता हूँ कि अनंतता की सुसमाचार की संदेश को बदलाना और मंदिर के वादों हमें मदद कर सकता है बंदे आशीर्वादों को देखने में। जीन गोंग हमारी माँ थी। हमारा गोंग परिवार यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के था। एक किशोर अफसर था हवाई होनोलुलु में, उसने सुना। विश्वासी गिरजाघर के सदस्यों ने मेरी माँ को मदद किया उसी तरह से उसकी समाचार के मित्र होकर। गिरजाघर के नियुक्त और उसके लगातार परमेश्वर की श्रीवाणी की द्वारा उसके पोषण होता है। आज के बाद चेता में जो गिरजा घर के कार्यक्रम में लौट आए हैं। एक परिवार जिसने मेरी माँ के पोषण किया था वो था गिरित जेड जोंग जूनिया का। एक आदमी को कई भविष्यवाणी जानता था और वो दिल और आत्मा को पसंद करते थे। ब्लैकबेरीज जब लाल होते थे वे कच्चे होते थे। आज हाथियों में मोबाइल को लेकर मैं जवान मित्रों से कहता हूँ, ब्लूबेरीज मोबाइल गिरजाघर के नए बिशपों को। मेरे माता पिता वॉल्टा एंड जिन गोंग ने 3 बार शादी किया, एक चाइनीज परिवार के लिए, अमेरिकन शादी में के लिए, प्रभु के घर में समय और आनंद के लिए। हमारे बच्चे गाते हैं, मैं मंदिर देखना पसंद करूंगा, मैं किसी दिन वहां जाऊंगा। हमारे युवा मंदिर धर्म विधि को प्राप्त करना चाहते हैं। अभी जल्द में मैं प्रभु के घर में एक योग जोड़ी से वादा गया था। मैंने उन्हें अमृत किया था अपने पहले और 50 साल तक मैंने की लिया। मैंने अपने आप को इन दोनों सुंदर योग जोड़ी के साथ मंदिर के शीशा को देखना हुआ पाया। मंदिर को दोनों शीशों को दूसरे को वापस दिखाते रहे और एक प्रश्चाई नश्चाई वही थी, आनंद थी। पवित्र धर्म विधि और वादों जो पवित्र मंदिर में होती है वो हर एक आसन करती है ईश्वर की उपस्थिति में लौटने के लिए और परिवार के साथ में और सबको बांधती हुए प्यार और विश्वास के लिए। आनंद के मंदिर के शिक्षा में मैंने पहले ड्रैगन गोंग के वापसी देखा जो दक्षिण चाइना में 1837 AD में पैदा हुआ थे। गोंग परिवार के सफलित पीढ़ी को मेरे पिता के हवाले किया जो हमारे परिवार का 32 लिखा हुआ पीढ़ी है। मेरे भाई बहन और मैं हमारी परिवार से 33rd पीढ़ी में सम्मिली है, 34th पीढ़ी के थे। हमारे नेति 35th गोंग परिवार पीढ़ी के लिखे हुए आनंद के मंदिर के शीशे में मैंने शुरुआत ये खत्म होने वाली पीढ़ी को नहीं देखा। फिर मैंने सिर्फ उपहरती हुई पीढ़ी को ही नहीं देखा मगर उपरती हुई परिवार के रिश्तों को भी। एक दिशा में मैंने अपने आप को पुत्र नति परनाति एक रूप में देखा वापस ड्रैगन गोंग के पास। शीशा के दूसरे भाग में मैंने अपने आप को पिता नाना परनाना और रूप में देखा, अपनी पत्नी सुजन को पुत्री नाती परनाती और दूसरी भाग में माता नानी और परनानी बनते देखा। आनंद के मंदिर की शीशा में मैंने हाल से अपनी पति और अपने आप को बच्चों की तरह अपने माता पिता और बच्चों के माता पिता की समझा, जैसे नेताओं को हमारी नाना नानियों और पर नजाओं के हमारे पर नेताओं के तरह। हर समय हर घरान करती है जब सीखते हैं पढ़ते हैं और भूमिकाओं को पुत्रा और माता पिता, माता पिता और पुत्रा के साथ। धर्मशास्त्र उधारकर्ता का बदलाता हुआ पिता और पुत्र धारता है। मानव शरीर में रहने के कारण उसे पिता और पुत्र कहने हमारे उधारकर्ता को पाता है और वो हमें कैसे मदद करेगा अपने लोगों हमारे पीढ़ी में दिख लच बीमारियों मृत्यु में भी सब चीजों में नीचे मिलना। हमारे उधारकर्ता हमारी कठिनाइयों को दूर करके हमें पीड़ा से मुक्ति कर देगा। स्वर्ग से परिषद के समय हमारा उद्धारकर्ता ने सिर्फ अपने पिता के कार्य को किया, दुनिया को अपने खुशी से रोशनी में बांधी है। अभी हमारे पास वो शक्ति नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सके, वो शक्ति हमें नहीं है मगर उनमें है अनंत और अंतिम बलिदान। सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता के परिचित से समय और स्थान को आए बढ़ाएगा जो सकता है मृत्यु से, गुस्से, दुख, बराबरी, अकेलेपन और दिल को टूटने से बचाता है। कभी कभी कुछ गलत हो सकता है जब भी हम करेंगे। एक मेमना जो भला और साफ है, हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए और हमारे संग रोता है। जब हम उसके याद करते हैं, वो हमारे साथ खड़े होते और सकते हैं सभी समय और सभी कामों में, सभी स्थान पर जहां रहेंगे। उसके विश्वासी मृत्यु से भी कितने कई, हम उसके करीब जाने के लिए हमारे उद्धारकर्ता में अपने स्वर्ग पिता के करीब ले जाता है, जहां सब कुछ सही नहीं है धरती पर। हम स्वर्ग के पिता को विश्वास कर सकते हैं, पाप से मुक्ति पा सकते हैं, जहां सच्चाई, पसंद और दयालु साथ में शांति से मिलती हैं। एक चमत्कार जो अनंत के मंदिर में शीशे में दिखती है, हम बदलाव सकते हैं। जब जीन और ओल्टागांग ने नए और कभी ना खत्म होने वाली वादों को लिया था, उन्होंने पूर्वजों के लिए दरवाजे को खोल दिया था, जैसे पहला ड्रैगन कोंग बांध जाएगा और भावी बिड़ाई में। कृपा याद करें, जब हम हर एक भाई और बहन तक पहुंच सकते हैं, हम पीढ़ियों को आशीर्वाद देते हैं। ये दुनिया के हलचल में, मगर सिर्फ उन सच्चाई और जीवित गिरजों में विश्वास और डर नहीं है। प्रोहितों पोल के शब्दों में मैं भी गवाही देता हूँ, मैं समझता हूँ कि ना तो मौत, ना तो जिंदगी, ना तो ऊंचाई, ना तो गहराई, ना तो कोई जीव जंतु हमें परमेश्वर के दूर नहीं कर सकती है, जो यीशु मसीह हमारे प्रभु में है। मैं विनम्रता से गवाही देता हूँ कि परमेश्वर जीवित है। वो हमारी आंखों के सारे आंसू को पोंछता है, सिर्फ खुशी के आंसू नहीं। जब हम अनंतता के मंदिर के शीशे के देखते हैं और अपने आप को घर में पाते हैं, साफ और गहरा हमारे परिवार के पीढ़ी पुरोहित के हक में मिल जाता है, प्यार से चिल्लाने के लिए, होजैना होजैना होजैना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
My beloved brothers and sisters across the world, I express my deep admiration.
को बतलाता हूँ मेरे भाई और बहनों, मैं बतलाता हूँ बहुत हिम्मत से, हम इस विस्तृत समय में रहते हैं, मगर चुनौती के समय नहीं। प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारे खोज में उसके पास लौटने के लिए। लो देखो जगत और प्रार्थना करो। हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं कोई हमें धोखा ना दे, सतर्क और जागरूक रहना। कोई भी इस दुनिया को प्रभाव से नहीं सलामत बचा है। आप कफरनहूम में यीशु के शीशे के अनुभव को याद करोगे जिन्होंने उद्धारकर्ता के पीछे चला था, उसके बाद उनके चेले उनके साथ ना चले। यीशु ने उन बारह की ओर घुमा और पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे? मेरे अपने मन में मैंने ऐसा सवाल पूछा है, कभी नहीं, मैं नहीं, मैं कभी नहीं उसे छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि तुम भी यही जवाब दोगे, मगर सवाल है, क्या तुम भी चला जाओगे? हमें अपने असुरक्षा पर सोचा पड़ता है। जिंदगी धार्मिक रूप से आसान नहीं। प्रभु क्या वो मैं हूँ? हम बपतिस्मा के पानी में हलते हैं खुशी से और आशा के साथ। उद्धारकर्ता कहता है, मेरे पास आओ, और हम जवाब देते हैं उनका नाम को अपने ऊपर लिए हुए। हम में से कोई भी इस सुसमाचार को सिर्फ थोड़ी समय के लिए नहीं चाहता, या लंबे समय तक जो खत्म हो जाए जरूरी सक्रिय समय में। शिष्यता के रास्ते दिल के आत्मिक दर से लिए नहीं होता है। यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर और मेरे पीछे हो ले। जब हम उद्धारकर्ता के पीछे चलते हैं बिना सवालों के, वहां पर कई चुनौतियां के सामना हमें करना पड़ेगा। विश्वास से आगे बढ़ना, ये अनुभव प्रभु के सही गहराई के वर्तलाप को हमारे पास लाती है। दुनिया के तारीख से आगे बढ़ने बढ़ने से ये वही अनुभव है जो हमारे दृष्टि और हमारे विचार को कम करता है। कुछ जिन्हें हम प्यार और प्रसन्नता करते हैं वो सीधे और पतले रास्ते से बुझते, उनके बाद उनके साथ नहीं। हम किसी तरह से दृढ़ता के साथ सच्चे बने रहते हैं उनकी सुसमाचार और धर्म विधाओं जो उनकी पवित्रता का हम किसी तरह। यीशु ने कहा, जब तक तुम ना फिरो और बालकों से सामना ना बनाओ तो स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर करने नहीं पाओगे। हमें बचना बच्चों के जैसे विश्वासी दिल की जरूरी है। उसके बलिदान की शक्ति से हमें इस तरह बनना है, बच्चों की तरह आज्ञाकारी, विनीत, सहनशील, प्रेम से परिपूर्ण होकर और सारी बातों को जिन्हें प्रभु उनके लब के लिए लागू करता है। ये हृदय की सबसे महान परिवर्तित है। हम जल्दी से देखते हैं, दो शब्द है जो संकेत करता है, वो शब्द है अपराध और शर्मिंदा। यीशु ने उनसे पूछा, उसने जिसको उधारकर्ता के देवताओं आसान नहीं है, क्या इससे तुम्हें अपराध है? बीज बोने वाले के उधार में यीशु ने चेतावनी दिया, उसने आना कुछ देर तक मगा और वचा के कारण जब कलिश या उपदेव होता तो तुरंत टोकर खड़ा होता है। कई रास्ता है जहां हम बुरा मान जाते हैं और कई तरह से बुराई मानने की स्थिति को महसूस करते हैं। हम गलती करते हैं, लायक नहीं महसूस करते हैं और सोच करते हैं क्षमा के लिए। हम सिद्धांतों के बारे में सोचते हैं, हमें वो सोच सताती है जो 150 साल पहले मंदिर में कहा गया था, हमारे बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता, हमें अंधेका या अनजाना करते हैं। ये 100 चीज़ें हो सकती है, हर बिल्कुल सही हमें लगता है उस समय। हमारे कमजोर के समय विरोधी प्रयास करता है और हमारे धार्मिक वादे को चीनने। अगर हम सतर्क नहीं रहते, हमारी दुखी बचपन की आत्मा वापस स्थान हो जाएगी, हमारी अपनी पहली के अंधेरी बचाओ उधारकर्ता के बचने वाली शक्ति की गर्मी को पीछे छोड़ देगी। जापानी पिपराट 1835 में सही रूप से देखा नहीं गया, उसे और उसके परिवार को घबराहट और शर्म लगी। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने बताया, पाली उन चीजों को कुछ नहीं की तरह देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बचाने वाला तुम्हारे साथ होगा। दूसरा उदाहरण 1830 में फिर जी विलियम्स एक नामचीन चिकित्सा संबंधित डॉक्टर का बपतिस्मा हुआ। उसने तुरंत ही अपने निपुणता और भदंत की गिरजाघर के हवाले किया, वो गिरजाघर में एक नेता बना। 1837 में उस समय के मुसीबत में फ्रेडरिक जूनियर ने बहुत गलतियां की, प्रभु ने प्रकट होने की कार्य बतलाई कि उसके कर्मों के अनुसार उसके पहले पद गिरजाघर से नेतापन को ले लिया जाए। वो सुंदर शिक्षा जो हम फ्रेडरिक जी विलियम से सीखते हैं, कुछ भी उसके व्यक्तिगत कमजोरी हो, उसके पास शक्ति से भरा चरित्र हो जो प्रभु के लायक वापस हो सकती है भविष्यवक्ता और गिरजाघर के लिए। जब उसके लिए आसान था अपने आप को गिराने के लिए बुराई में, 1847 में उसने अपने आप को महासम्मेलन में पेश किया, विनम्रता से क्षमा मांगते हुए अपने गलती को लिया और अपने स्पष्ट भावना के साथ कि वो परमेश्वर के पीछे आ लिए। मैं हाल में रसिफ ब्राजील के मंदिर के प्रधान के मिला था जिसका नाम था फ्रेडरिक जी विलियम्स। उसने जीना कि कैसे उसके पर ननाओं के चाल चलन के चुनाव ने उसके परिवार को मदद किया और उसके सेवाओं के भावी पेदियों को। बोर्मर धर्मशास्त्र में हम लिहाई के द्वारा देखते हुए जिंदगी के पेड़ को सीखते हैं। ये देखना उन अनमोल आत्माओं का था जो उस गठन अंधेरे घुन में आगे बढ़े। लोहे की उस चढ़ के चोड़ को पकड़े हुए अक्सर उस वृक्ष से फलों को खाने में नहीं लिया। निफाय ने पेड़ को परमेश्वर की प्रेम की तरह बतलाया। वो फल देता है जो आत्मा और आनंद से प्रेरित होती है। फल खाने के बाद लिहाय ने कहा, बहुत बड़े महल को देखो, लोगों से भरी हुई, बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष और उनके पहनावा देखो। देवतों ने समझाया, खिल्ली उड़ाने के भाव में उनकी ओर उंगली दिखा घमंड और दुनिया के भेमने को बतलाती है। निफाय ने दुख से कहा, हमने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दुख में वहाँ और थे जिनके हिम्मत टूट गए। सुषमाचार बतलाता हुआ है, उन फलों का स्वाद लेने के बाद वो लज्जित हो गए और फिर वो अपने आप में खोल लिए। हम मसीह के चेलों की तरह दुनिया से अलग खड़े होते हैं। वहाँ कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा नहीं महसूस करते हैं। हंसी और निकाल देने की उंगलियों को हम पर उधर जाती है। प्रधान मोहनसन ने कहा, जब तक कि हमारी गवाही अच्छी नहीं होगी या मुश्किल होगा उनको झेलना जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। निफाय ने कहा, सुनो नहीं हो उन्हों सुनो। पॉल ने बतलाया कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा की को नहीं दिया है, नहीं रहो प्रभु की गवाही के लिए शर्मिंदा ना रहो, हम उससे कभी नहीं छोड़ेंगे। जब प्रधान उगडोफ के साथ यूरोप के पूरब में जर आ था, मैं संतों के विश्वास और हिम्मत से खुश हुआ। यूक्रेन के एक प्रयोहित नेता के अध्यक्ष ने हमें बताया कि 1993 सवान में सिर्फ 6 महीने के ही बपतिस्मा के बाद उसे शका प्रधान बना दिया गया था। यूक्रेन के निर्देश में नहीं था उस समय, और यीशु के विश्वास को खुली तरह से दिखलाना और परिपुष्ट सुषमाचार मुसीबत हो सकता था। पुरोहितों नेता ने हमें बतलाया, मैंने प्रार्थना किया, मेरे पास गवाही था और मैंने वादा किया को लिया था। मैं जानता था कि प्रभु क्या चाहता कि मैं करूं। हिम्मत के साथ वो और उसके पति विश्वास में आगे बढ़े। यीशु मसीह के सुषमाचार से शर्म नहीं हुआ। कुछ पूछते हैं, क्या मुझे दूसरों से अलग होना है होगा? क्या मैं यीशु का चेला नहीं बन सकता बिना अपने चाल चलन को सोचते हुए? क्या मैं यीशु को प्यार नहीं कर सकता बिना शुद्धता के नियम को रखने बगैर? क्या मैं उसके प्यार नहीं पा सकता रविवार को तोड़कर? यीशु मसीह ने कहा है, जब आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। कुछ पूछते हैं, क्या वहाँ कई और विश्वासी नहीं है जो मसीह से प्रेम करते हैं? बिल्कुल वहाँ है। कैसे भी, यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संत का सदस्य उसके होने का सच्चाई है। सिर्फ धर्मशास्त्र से नहीं मगर मोर्मन की धर्मशास्त्र से जानते हो कि उसका पृष्ठ वापस आ गया है। उसके पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद हमें मिला है और फिर हम उसके पास वापस लौट सकते हैं। प्रभु ने कहा कि वो अपने लिए चुनाव कर सकते हैं। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जब तुम बुराई या शर्म को नहीं चुनोगे, तुम उनके प्यार और स्वीकृति को महसूस करोगे और तुम जानोगे कि तुम ज्यादा उसकी तरह बन रहे हो। क्या हम सब कुछ समझ सकेंगे? बिल्कुल नहीं। हम कुछ सवालों को बिना जाने ही छोड़ेंगे ताकि उसे बाद में जाना जाए। क्या सब कुछ ईमानदारी होगा? हम कुछ चीज़ों को मानेंगे कि हम बना नहीं सकते और दूसरों को माफ़ करेंगे जब डर होगा। क्या हम कभी कभी दूर महसूस करेंगे जब स्थितों में उनसे हमारे हृदय में है? ज़रूर। क्या हम कभी भी आश्चर्य होंगे उस गुस्से को देखकर जो कुछ के पास प्रभु के मंदिर को देखकर होगा और कम शक्तिमानों के उभरते हुए विश्वास को छीन लेंगे? हाँ, मगर ये बढ़ना है कि गिरजाघर के किस्मत को नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं अपने पसंद के गाने में से इन शब्दों से प्यार करता हूँ। उस आत्मा को जिस पर ईश्वर ने मदद की आशा ही है। मैं नहीं छोड़ूंगा और उसे शत्रुओं को छोड़ नहीं सकता। जिस आदमी को यीशु की ज़रूरत है, उस आत्मा को सारे नरक भी हिलाने की कोशिश करें। मैं उस आदमी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस आदमी को कहीं छोड़ूंगा नहीं, त्याग से चाहे विश्वास को हिलाना चाहे। हम अपने धार्मिक जड़ों को अंदर तक डालते हैं। हम अभी जीवित भविष्यवक्ताओं की वाणी को फिर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, कि हम उनकी आवाज़ को सुने और आगे बढ़े। कुछ भी चुनौती हो, हम कभी नहीं उसे छोड़ेंगे। उद्धारकर्ता ने अपने देवता से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पीटर ने जवाब दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि तू ही वास्तव में मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। मेरे पास भी वो गवाही है, इसलिए मैं बयान करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
We remind the brethren.
भाइयों को हम महापुरोहित सभा के बारे में याद दिलाते हैं जो सम्मेलन केंद्र में आज शाम 6 बजे शुरू होगी। टैबरनेकल क्वायर प्रसारण पूरे देश भर में कल सुबह 9:30 से 10 बजे होगा। रविवार सुबह की सभा, सम्मेलन तुरंत उसके बाद। हम संयुक्त गायक मंडली का आभार मानते हैं जिसने हमें सुंदर संगीत से इस शाम को प्रदान किया और उनको जिन्होंने इस शाम के सभा में बातें की है। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट जो 12 देवदूतों की परिषद के में है, वो हमारी इस सभा के अंतिम भाषणकर्ता होंगे। उनके भाषण के बाद गायक मंडली गाएंगे होम। गाने की समाप्ति पर एल्डर जॉर्ज एफ सभा 170 के हैं, उनके द्वारा प्रार्थना की जाएगी। एल्डर स्क्वाड, जब सही तरीके से विश्वास को समझा जाए और इस्तेमाल किया जाए, उसके प्रभाव तो और शक्तिशाली होते हैं। ऐसे विश्वासी की ये जीवन को थोड़ा धार्मिक गतिविधियों से बाहर बेहद खुशहाल जीवन बना सकता है। विश्वास का प्रयोग करना स्वर्ग के पिता के खुशहाली की योजना के लिए जरूरी है, मगर सच्चे विश्वास, मुक्ति में विश्वास, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास को केंद्र करता है। उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं में विश्वास, प्रभु के चुने हुए के भविष्य के मार्गदर्शन पर विश्वास, अपने छुपे हुए लक्षणों और गुणों को जाना हो जीवन बदल सके में विश्वास, सच्चे से उद्धारकर्ता में विश्वास करे और शक्ति का सिद्धांत है। विश्वास रचना करने का बुनियादी अंत है। मैं निश्चित हूँ कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपना भूमिका में विश्वास का इस्तेमाल करता है। स्वर्ग के पिता के आदेश लेने के लिए स्वामी ने इसका इस्तेमाल किया। सबसे द्वारा वाले ध्वनियाँ बनने के लिए और क्वक बनाने के लिए सबसे छोटे मूल वस्तु जो आज हम जानते हैं, फिर भी मुझ में विश्वास है कि रचना के आश्चर्य में और भी छोटे मूल वस्तु है। भविष्य में विश्वास पाया जाता जब एक दंपति मंदिर में बनते हैं। दो समझते हैं, वो समझते हैं कि यीशु मसीह के शिक्षा और स्वर्ग के पिता की खुशहाली की योजना का पालन करने के वो साथ एक खुशहाल जीवन बिता सकेंगे। वो जानते हैं कि जब बढ़ती की मौके देने वाली चौतानियों आएगी, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर तरीके ढूंढ लेंगे उन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए उपयोग और चरित्र बनाने वाली तरीकों से। विश्वास और चरित्र का करीब संबंध है। परमेश्वर का आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी होने की शक्ति में विश्वास तुम्हें चरित्र की शक्ति उत्पन्न करेगा जो अधिक जरूरत के समय तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगा। ऐसा चरित्र बहुत चुनौतियों का बकवावे के चैनों में नहीं विस्कित होता। सच्चे संदातों में तुम्हारा विश्वास आजमान चरित्र विस्कित करता है। मजबूत चरित्र तुम्हें और विश्वास आजमाने की क्षमता का बढ़ाता है। जितना तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा उतना तुम उतना ही लायक होगे विश्वास की शक्ति को जो आजमाने से लाभ पाने में। तुम जाने पाओगे कि कैसे विश्वास और चरित्र मिलकर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। चरित्र धैर्यपूर्वक विकसित किया जाता है। सिद्धांतों माताओं और आज्ञाकर्ता को अपने जीवन में आजमाने से हम वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। लगातार वो करने से जो है काम बनना चाहते हैं। सच्चा चरित्र एक बहुमूल्य प्रदर्शन है तुम क्या बन रहे हैं। सच्चा चरित्र किसी अन्य वस्तु को तुम अपनाते हो से ज़्यादा मूल्य का है। जैसे हो जो ज्ञान तुम्हें अध्ययन द्वारा हासिल किया है या कोई लक्ष्य तो जो तुम्हें पाया है, चाहे मनुष्य उसकी कितनी प्रशंसा करे, दूसरे जीवन में तुम्हारे सच्चा चरित्र का मोल निकाला जाएगा यह जानने के लिए कि तुम्हें मनुष्यता के सब योग को कैसे इस्तेमाल किया। न शैतान ना कोई और शक्ति तुम्हारे बढ़ते हुए चरित्र को नीचा या नाश नहीं कर सकते, सिर्फ तुम इसे कर सकते हो। एक तुम्हें उत्तम चरित्र मिट्टी में मिल जाता है जब उस पर धोखा या पाप का असर पड़ जाएगा। मजबूत नैतिक चरित्र लगातार मुसीबतों और परीक्षाओं में सच्ची चुनाव करने से आता है। ऐसे चुनाव बनते हैं जब उन चीज़ों से जैसे माना जाता है और जब उस पर अमल किया गया। कौन से वो शक्ति प्रदान करने वाला सिद्धांत है जिस पर विश्वास केंद्रित है। परमेश्वर पर भरोसा करो और उसके सहायता प्रदान करने की इच्छा पर, जबकि भी हमें ज़रूरत पड़े उनके आज्ञाओं का पालन करना। ऐसा जीवन को दिखाए कि वो तुम पर भरोसा कर सकते हैं। आत्मा के प्रोत्साहन को सुनना और वैसा करने की योग्यता और इच्छा, उस प्रोत्साहन का साहसी उपयोग, धैर्य और समाज पर परमेश्वर तुम्हें संघर्ष करने से बढ़ने के लिए और जब जवाब लंबे समय में थोड़ा थोड़ा आए। विश्वास ऐसी चीज है जिसकी आशा की जाती है। वो दिखाई नहीं देता, इसलिए अगर वो दिखाई नहीं देता तब उस पर संदेह पर मत करो, क्योंकि इसलिए तुम्हें तब तक शक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जब तब तुम अपना विश्वास आजमाओगे, यानी कि किसी धारणा पर काम करो, तुम आत्मा की पुष्टि करने वाले साक्षी करो पाएंगे जब तुम अपने समझ के अनुसार काम करोगे और फिर भी नहीं जाओगे क्या करना है। अगर तुम अपना विश्वास आजमाओगे, तुम्हें सुझाव मिलेगा कि कोई और रास्ते में नहीं मिल सकता। चाहे तुम्हारे विश्वास कितना मजबूत हो, परमेश्वर तुम्हें हमेशा तुम्हारे इच्छा अनुसार शीघ्र इनाम नहीं देता। आभारी रहो कि परमेश्वर कभी कभी तुम्हें संघर्ष करने देता लंबे समय तक कोई जवाब ना आने से पहले। इसका कारण तुम्हारा विश्वास ज्यादा होता है। चरित्र का बुनियाद है सच्चापन। योगी चरित्र आत्मा के निर्देशन पहचानने की तुम्हारी क्षमता को मजबूत करेगी और उसके प्रति आज्ञाकारी बनेगी। लगातार विश्वास आजमाने से मजबूत चरित्र बनता है। आपके उभरती चरित्र का तो बुनियाद यीशु मसीह और उनके शिक्षा को अपने जीवन का केंद्र बनाने से आता है। धरती पर तुम्हारी कुश्ती तथा तुम्हारा अंत उदार को तुम्हारे कई सही चुनाव की जरूरत है, जिसमें से कुछ भी कठिन नहीं है। वो निर्णय जब एक साथ होती तब एक चरित्र बनती है जो पाप और बुराई के बुरे प्रभाव से दूर रखती है। सच्चा चरित्र का पसंद कांच की तरह है जिसे चुने गए वस्तुओं से बनाया गया हो, विश्वास से रूप दिया गया, अच्छे कार्यों द्वारा सावधानी से रखा गया हो और आगे बढ़ने वाले अनुभवों को की आग की बत्ती में चलाया गया हो। वो बहुत सुंदर और बहुमूल्य चीज है, फिर भी उसकी चेन में उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि और पीड़ा लंबी कोशिश लगेगी। जब आत्मा नियंत्रण द्वारा सुरक्षित रखे जाए, ईमानदार चरित्र अमंत तक कायम रहेगा। भौतिक व्यक्तियों खुद खुशहाली और संतुष्टि और धरती पर जब कुछ की प्राप्ति नहीं उत्पन्न करती, वो चरित्र की सृष्टा है जो अनेक सच्चे निर्णय बनने का आत्मा शक्ति और विश्वास है जिसे जीवन को निर्देशन मिलता है। लगातार सच्चा जीवन जीने से एक आत्मा शक्ति और बल मिल सकता है जिसे पाप और बुराई के नाश करने वाले प्रभाव से बचाव मिलता है। इस मसीह में तुम्हारा विश्वास और आज्ञाकारिता उनके आज्ञाओं के प्रति तुम्हारे चरित्र को मजबूत रखेगा। तुम्हारा चरित्र बतलाता है तुम क्या बन रहे हो। वो सबूत है कि तुम धरती पर अपना समय कितनी अच्छी तरह बिता रहे हो इस परीक्षा कल के समय। एक स्वयंसिद्ध है कि तुम्हें उतना ही मिलता है जितना तुम्हें उसके लिए दिया। तुम्हें वो ही मिलता है जो तुम्हें आज्ञा करिता यीशु मसीह में विश्वास और सच्चाइयों को अमल करने से देता है। जो तुम्हें मिलता है वो है चरित्र की रखना, बाहरी बढ़ती और तुम्हारे मरणशील लक्ष्य की पूर्ति की तुम्हारी परीक्षा हो और तुम्हें खुशी मिले। ये मरणशील जीवन परीक्षा का स्थल है। हम कितनी अच्छी तरह उसके चेतावनियों का सामना करते हैं बतलाता है हमारे चरित्र कितना मजबूत है। यीशु मसीह में और उनके शिक्षा में हमारा विश्वास हमारे चरित्र को मजबूत करता है। एक गवाही मजबूत होती है धार्मिक धारणा से, जो एक शिक्षण एक सच्चे कार्य का योग्यता को सिद्ध करती है। अक्सर ऐसे मार्गदर्शन के साथ शक्तिशाली बनाए भी आती है जो आंखें में आंसू लाती है और बोलना मुश्किल करती है। गवाही चरित्र का महत्वपूर्ण भाग है और चरित्र अगणित सही चुनाव के बाद बनता है। यह चुनाव भरोसेमंद विश्वास से होती है उन चीज़ों में जिन्हें माना जाता है और जो शुरू में नहीं दिखता। एक मजबूत गवाही शांति, सहानुभूति और आश्वासन प्रदान करता है। वो एहसास दिलाता है कि जब उधारकर्ता के शिक्षण को लगातार पालन किया जाए, जीवन सुंदर होगा, भविष्य सुरक्षित और हमारे पास उन चेतावनियों का सामना करने से की क्षमता होगी जो हमारे मार्ग पर पड़ता है। एक गवाही सच्चाई को समझने से बढ़ती है जो धीरे धीरे प्रार्थना और धर्मशास्त्र के सिद्धांत पर विचार करने से मिलता है। उसका पोषण विश्वास से उन सच्चाइयों को जीने से होता है जब हमारे में सुरक्षित टिकाव होती है। दुनिया में शैतान का बढ़ता प्रभाव हमें अपने आप को प्रमाणित करने का वातावरण देता है, जबकि वो आज उठाव पताल पर कर रही है। शैतान की अंतिम भाग्य यीशु मसीह द्वारा तय किया गया है। आज शैतान जीतेगा नहीं। आज भी प्रभु के धरन में काम करता है। वो किसी के पाई गई आशीर्वाद को छीन नहीं सकता। उसके पास वो शक्ति नहीं है कि पति पत्नी और बच्चों के आनंद बंधन जो मंदिर में बंधा गया हो को नष्ट करे। वो सच्चे विश्वास को तसली नहीं दे सकता। वो तुम्हारे गवाही को छीन नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ी को शक्ति है उनकी भगवान को अपने है से, मगर उसमें कोई शक्ति नहीं खुद नहीं नष्ट करने का। अंत में परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को चरित्र बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। चरित्र वो दिखलाता है जो तुम बन रहे हो। मजबूत चरित्र लगातार सही चुनाव करने के परिणाम है। चरित्र का बुनियाद सच्चापन है। तुम्हारा चरित्र जितना मजबूत होता है, तुम उतना काबिल होते हो विश्वास की शक्ति को आजमाने के लिए। क्या मैं 4 सिद्धांतों को बन सकता हूँ जिसने मेरे जीवन में शांति और खुशहाली के सबसे घिरे एहसास लाई है? प्रभु ने इन बयादी सिद्धांतों को बनाया अपने अंत योजना में और हर एक आवश्यक है। सब साथ मिलकर काम करते हैं जीवन के चेतावनों को कदम रखने वाले खुशहाली की प्रतर में बदल कर आज और हमेशा के लिए वो है। प्रभु यीशु मसीह में और उनके कार्यक्रम में विश्वास जिसे हासिल करने की शक्ति मिलती है। पश्चाताप ताकि हम उन भूल या काम के गलतियों का परिणाम सुलझा सके। प्रभु के आज्ञा का पालन करना शक्ति और निर्देशन प्रदान करता है हमारे जीवन में। खुद को बुलाकर सेवा प्रदान करने से दूसरों के जीवन सुधारने के लिए। अगर तुमने सच्चा जीवन जीने की सोच ली है, निराश मत होना। जीवन अभी कठिन लगेगा, मगर लोहे की छड़ को खास के पकड़े रहिए। तुम जानते नहीं तुम्हारा प्रगति कितना बेहतर है। तुम्हारे संघर्ष चंद्रतरा मर्यादा और पूर्ण विश्वास को स्थान देता है स्वर्ग के पिता के बादों में और उदारकर्ता में, जब तुम लगातार आज्ञाकारी रहते उनके आज्ञाओं के प्रति पवित्र आत्मा तुम्हें हमेशा उन निर्णयों को लेने में प्रतीत करे और चरित्र को मजबूत करता और बहुत खुशहाली उत्पन्न करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
our dear Father in heaven.
हे हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमें आपके बच्चों के नाम से जाना जाता है और हमारे स्वर्ग पिता आप हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके दया जो हमारे जीवन में है, और ख़ास करके जो ये योजना आपने हमें आनंद जीवन के लिए बनाया, खुशहाली के। हम धन्यवाद देते हैं जो जीवित प्रॉफिट है, जो हमें राह दिखाता है। हम धन्यवाद देते हैं जो हमको शिक्षा दिया गया है इस कॉन्फ्रेंस के समय, और जो संगीत दिया गया है इस वक्त हमारे लिए। हम आपसे प्यार करते हैं पिता, और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रक्षा करें हमारे प्रोफेट्स के, जो सीयर्स और रेवलेटर्स हैं, हमारे प्रचारक मिशनरीज जो भी हैं दुनिया भर में, उनके दुनिया भर में जो आपके सुसमाचार के गवाही देते हैं और खुशहाली का। हम आपसे ये चाहते हैं कि हमें आशीष दे, कि हमें पवित्र आत्मा से आशीष दे, ताकि हमें शक्ति मिले, ताकि हम जाकर उनकी सहायता कर सकें जो राह से भटक गए हैं, जिन्हें इस समाचार को नहीं पता। और एक बार फिर हम आपसे प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a family choir from Sandy and Draper, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.